हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 37 एंड 38। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधारो बिंबफलाधरोष्ठा, पुलिन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति वेदे साङ्गपाठकमोपनिषदि, गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी, पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 37। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुत गोस्वामी कहते हैं, न चास्य कश्चन निपुणेन धातुर् आवेति जन्तु कुमनीश ऊति, नामानि रूपाणि मनोवचोभि संतन्वतो नाटचर्या मिवाख्या। न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातु अवैति जन्तु कुमनीश ऊति, नामानि रूपाणि मनोवचोभि संतन्वतो नाटचर्या मिवाख्या। न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातु अवैति जन्तु कुमनीश ऊति, नामानि रूपाणि मनोवचोभि संतन्वतो नाटचर्या मिवाख्या। न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातु अवैति जन्तु कुमनीश ऊति, नामानि रूपाणि मनोवचोभि संतन्वतो नाटचर्या मिवाख्या। न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातु अवैति जन्तु कुमनीश ऊति, नामानि रूपाणि मनोवचोभि संतन्वतो नाटचर्या मिवाख्या। न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातु अवैति जन्तु कुमनीश ऊति, नामानि रूपाणि मनोवचोभि संतन्वतो नाटचर्या मिवाख्या। शब्दों का अर्थ, न चास्य कश्चिन् न मना नहीं च मना तथा अस्य यानी भगवान का कश्चित यानी कोई निपुणेन धातु निपुणेन अर्थात निपुणता से धातु यानी सृष्टा का अवैति जंतु को मनीष ऊति, अवैति यानी ज्ञान जान सकता है, जंतु यानी जीव को मनीष यानी अज्ञानी ऊति यानी भगवान के कार्य, नामानी रूपाणी मनोवचो भी, नामानी अर्थात भगवान के नाम, रूपाणी यानी उनके रूप, मनोवचो भी यानी चिंतन या संकल्प या वाणी के द्वारा, संतन्वतो नट चर्यामि वाक्य। संतन्वतो अर्थात व्यक्त करते हुए, नट्यचर्याम अर्थात नाटकीय कर्म या करामात, इव अर्थात सदृश, अज्ञ यानी मूर्ख। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो नाटक में नट्य जैसा कार्य कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य अपने चिंतन या अपने वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त नहीं कर सकते। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी परम सत्य के दिव्य भगवान दिव्य स्वभाव का ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। इससे कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपनी अपूर्ण कल्पना तथा उनके कार्य के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। एक अल्पज्ञ के लिए भगवान के कर्म, प्राकट्य तथा तिरोधान, भगवान के नाम, रूप, राज, सम्मान, व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित सारी वस्तुएं रहस्यमय होती हैं। भौतिकतावादियों की दो कोटियां हैं, एक सकाम कर्मियों की तथा दूसरी मीमांसकों की। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती और मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर मुख मोड़ते हैं तथा चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य उसी तरह रहस्यमय बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों को जादूगर के कर्तव्य। परम पुरुष की जादूगरी से छले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा चिंतन में कितने ही निपुण क्यों न हो जाएं। ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे आध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। मीमांसक अर्थात ज्ञानी सकाम कर्मियों के से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चुंगल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप, नाम तथा कर्म हो वह माया से उत्पन्न है। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है। और चूंकि ऐसे मीमांसक अर्थात ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की समता संसारी नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच अज्ञानी हैं। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक नहीं पहुंचा जा सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान सदैव यहाँ तक के भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी पुरुष भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। श्लोक नंबर 38। कृपा करके मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सवी ददातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणि यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम् सवेदधातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणि यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम् सवेदधातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणि यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम् सवेदधातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणि यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम् सवेदधातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणि यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम् शब्दों का अर्थ सवेद धातु समनवेही वेद मन जानने जानेगा जान सकते हैं धातु यानी सृष्टा की पदवीं परस्य पदवी मतलब महिमा को परस्य यानी आध्यात्म का दुरंत वीर्यस्य दुरंत वीर्यस्य का मतलब होता है अत्यंत ही शक्तिशाली का रथांग पाणे यानी भगवान कृष्ण का जो हाथ में रथ का चक्र धारण करते हैं यो मायया अर्थात यह जो मायया अमायया का मतलब होता है किसी हिचक के बिना संतत यानुवृत्त्या संतत निरंतर अनुवृत्त्या अनुकूल होकर भजेत तत्पाद सरोजगंधम भजेत मतलब सेवा करता है तत्पाद यानी उनके चरण रूपी सरोजगंधम कमल की महक अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद जो बिना हिचक के अभाद रूप से चक्रधारी भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है केवल शुद्ध भक्त ही सत्काम कर्मों एवं कल्पना के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि केवल शुद्ध भक्ति ही सत्काम कर्मों एवं कल्पना के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के कपटी प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं, किंतु जो उनके प्रिय या प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्ति ही होते हैं और भगवत कृपा से आध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं, लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में पड़े रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेम भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने की यही भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। इसके लिए सकाम कर्म या कल्पना कोई योग्यता नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है। आज भगवान को साक्षात करने की विधि बताते हुए सुत गोस्वामी बताते हैं, न चास्य, अस्य का मतलब होता है वो यानी जिस भगवान की बात कर रहे हैं ना हम पिछले श्लोकों में, कि जो कर्म करते ही नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था 35 में, एवं जन्मानि कर्माणि य कर्तुम अजनस्य, वो जन्म भी ले जन्म अगर लेते हैं और कर्म भी करते हैं तो भी अजन्मा है और अकर्ता है, तो वो कहाँ रहते हैं, हृत्पते, वेद गुह्यानी हृत्पते, वो वेदों में भी उनके विषय में हम वेदों के पढ़ने से भी उनको नहीं जान सकते। और ये जो भगवान की लीलाएं होती हैं वो निष्कपट होती हैं, वो किस तरह से इस संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, परंतु किसी भी चीज में वो मोहित नहीं होते हैं, जबकि वो हर एक कण के अंदर होते हैं और वो षडेश्वरीय से युक्त हैं। उसी भगवान के विषय में कहते हैं, न चास्य कश्चन निपुणे न धातु, यानी कि जो कश्चन का मतलब होता है कोई भी, ऐसे भगवान को कोई भी निपुणे न धातु, निपुणे यानी निपुणता से, यानी कोई भी इस बात में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है कि उस भगवान को जान सके, अवायती जान नहीं सकते उसको कभी भी, और कौन नहीं जान सकते, जंतु कुमिन, जो भी जंतु का मतलब होता है सारे जितने भी जीव हैं, कुमनीश होती, कुमनीश मैंने जो भी अज्ञानी है। अब अज्ञानियों के विषय में क्या कहा जाए कि ज्ञानी और अज्ञानी का अगर हमें डिफरेंस मालूम करना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसको कितने श्लोक पढ़ने आते हैं या किसने कितनी शास्त्र पढ़ लिए हैं या किसने कितना ज्ञान अर्जित कर दिया है रीडिंग करके या पढ़ के या इस तरह या वहां वहां से जहां जहां से हम सीखते हैं, लेकिन ये वाला ज्ञान, जैसे अगर संसार में भी हम कुछ सीखना होता है तो हमें एक प्रोसेस से गुजरना होता है। जैसे अगर कोई किसी को कंप्यूटर साइंस सीखना होता है तो क्या जिसने पहले सीखा हुआ है उसके अंडर में रहकर उसको सीखना पड़ता है, कि जैसे उसने सीखा है और जिसने पहले भी सीखा होगा उसने भी खुद से नहीं सीखा होगा कि थोड़ा उसने सीख लिया थोड़ा वहां से सीख लिया थोड़ा वहां से सीख लिया, ऐसे थोड़े होगा, जिसने पहले से ही सीखा होगा उससे सीखा होगा, उसने भी उससे पहले और आगे भी जो सीखेंगे, ऐसा थोड़े है कि जब जिसको है ना जहां से समझ में आए किसी से भी सुन लिया और किसी से भी सीख लिया भाई मैं कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बन गया, नहीं। अगर किसी को कुछ भी बनना होता है, जैसे डॉक्टर बनना होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है डॉक्टरी की सारी किताबें लेकर आ जाओ घर पे पढ़ो और फिर, या फिर किसी थोड़ा चाचा से पूछ लिया थोड़ा मामा से पूछ लिया थोड़ा उससे पूछ लिया थोड़ा किसी संत से पूछ लिया थोड़ा किसी संत से और पता चल गया कि हाँ भाई मैं अभी डॉक्टर बन गया, उसके लिए एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। लेकिन हमारी इतना दुर्भाग्य है कि भौतिक किसी भी कार्य को सीखने के लिए हमें एक प्रॉपर ट्यूटर चाहिए होता है, एकदम जो परफेक्ट भी हो और जो है ना मतलब एक अच्छी जगह से सीख कर आया हुआ हो, जो प्रमाणिक डिग्री होनी चाहिए उसके पास। ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी सीख कर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, है ना। उसके लिए आपको एक प्रोसेस चाहिए होता है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इतना दुर्भाग्य है कि आध्यात्मिक ज्ञान अगर किसी से पूछो आपने किससे सीखा, जैसे आप किसी से पूछो भाई आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स कहाँ से कर रहे हो, तो नाम बताएगा, एड्रेस बताएगा कि यहाँ से ये टीचर है, इन्होंने ये जो टीचर है उन्होंने उस वहां से किया है, अमेरिका से किया है या यूएसए से किया है या कहाँ से किया, उनसे मैं सीख रहा हूँ। और किससे पूछो भाई डॉक्टरी आप कहाँ से करोगे, तो वो बताते हैं भाई इस कॉलेज में मुझे ये करना। बोला भाई आप है ना भगवद गीता किससे सीख रहे हो, या फिर क्या आप आध्यात्मिक ज्ञान किसी से सीख रहे हो, उसको किसी से सीखने की क्या जरूरत है। गीता पढ़ी हुई है, कभी मैं एकादशी के दिन पढ़ लेता हूँ, जो समझ में नहीं आता वो किसी से पूछ लेता हूँ, लेकिन ना क्वेश्चन उधर लाइन लगा देता हूँ और फिर समझ में आया तो ठीक है, अगर किसी ने समझाया तो ठीक है, और समझाने वाला भी गोल 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 घुमा के वो बता के दे देगा, तो फिर ना हम बोलेंगे हाँ सर समझ में आया, वो बोलेगा समझ में आया, तो सारी लाइन हाँ हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। बल्कि उसका एक शब्द भी समझ में नहीं आया होता है तो भी जान छुड़ा नहीं, अभी कौन 1.5 घंटे से ज्यादा क्लास अटेंड करेगा, है ना। उसका कोई कंप्लीट प्रोसेस नहीं करना चाहते हम कि शास्त्र अध्ययन करने के लिए भी भौतिक चीजों के लिए है ना एक्सपर्ट चाहिए होता है, और शास्त्र अध्ययन के लिए कभी भी हम एक प्रमाणिक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं महसूस करते। आजकल के लोग इसीलिए भौतिक चीजों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में तनिक भी आगे नहीं बढ़ रहे। इसीलिए यहाँ पर लिखा कि श्री प्रभुपाद जी ने बोला कोई भी परम सत्य के दिव्य स्वभाव को ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। अब कोई भी कर रहा है यानी कोई भी लिखा है ना श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य के पहले लाइन में, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐसा होने, इसका मतलब जब इस तरह से लिखा जाता है तो कोई डिसाइड हो कि इस तरह लिखता है कि 99.99 ना, कि बस कोई 0.01% कोई ऐसे सच्चे साधक होते हैं, सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के जानने वाले होते हैं जो कि भगवान के विषय में आपको सही तरह से बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि अगर वो जानने वाले कम है तो हम सोचे कि भाई हम कोई है ही नहीं तो क्या करें। अगर किसी को कोई हाईएस्ट एजुकेशन लेनी होती है और उसके एरिया में वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती तो वो क्या करते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पर कॉलेजेस नहीं होते हैं, तो दूसरी जगह पे शहर में जाकर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या इस तरह। उसी तरह से अगर आध्यात्मिकता इजी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम बहुत सस्ता ले रहे हैं, ये इजीली नहीं मिलता है, इसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु की खोज जो कि वाकई में हमें वास्तविकता को खुल के बता सके, जो कृष्ण के विषय में हमें संपूर्ण ज्ञान प्रोवाइड कर सके, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नामानि रूपाणि मनोवचो भी, कि भगवान के नाम भगवान के रूप को चिंतन या वाणी के द्वारा भी व्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई शास्त्र पढ़ के या चिंतन शक्ति, चिंतन यानी सोच कर हाँ भगवान ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, फिर उसको बोल कर बता दे कि भाई हाँ भगवान के रूप ऐसे हैं भगवान। जब तक कोई आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है, जब तक कोई परंपरा से आए हुए गुरु की शरण नहीं लेता है, जब तक कोई आध्यात्मिक शास्त्रों को शुद्ध भक्त के द्वारा नहीं श्रवण करता है, तब तक वो भगवान के विषय में जान नहीं सकता है। और दूसरा ये कि भगवान के विषय में जानना हम हमारी मर्जी से कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम सोच कर पढ़ कर रीड करके, भगवान ने साफ साफ बताया श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 11 टेक्स्ट नंबर 53 भगवान कहते हैं ना हम वेदेन तपसा ना दानेन चेष्टया, ना हम वेदेन तपसा, ना हमें वेद अध्ययन से, कोई चाहे कि मैं वेद अध्ययन करके भगवान को समझ सकूंगा, तो साफ साफ भगवान ने कहा ना हम वेदायन तपस्या, कोई सोचे कि मैं तपस्या करके भगवान को जानूं, तो साफ साफ भगवान ने कहा न तपस्या न दाने न चेष्टा, दान देने से भी नहीं और पूजा करने से भी नहीं समझ सकता है कोई भी मुझे। साफ साफ स्टेटमेंट भगवान ने अपने विषय में लिखा है कि यदि आपको मुझे जानना है तो ये तरीके आपके काम नहीं आने वाले, ना वेद पढ़ना, ना तपस्या करना, ना दान देना और ना ही पूजा करना। तो प्रश्न ये उठता है कि भला कैसे जाने भगवान को। तो भगवान कहते हैं, भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 54 में, 11.54 में एक तरीका बताते हैं कि केवल यही तरीका है। यहाँ पर भगवान कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विदुर्जुन, अहम एव विदुर्जुन, मुझे यदि जानने का कोई विधि है, मुझे जानने का कोई तरीका है तो एक ही है, क्या? भक्त्या तो अनन्य, भक्ति भी तो का मतलब होता है लेकिन, है ना, एक तो भक्ति से लेकिन अनन्य, अनन्य का क्या मतलब है, मतलब सकाम कर्म तथा ज्ञान से रहते, यानी कि और उसके अंदर सकाम कर्म। इसे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति का मतलब क्या है कि अन्य अभिलाषता शून्यम, यानी कि और कोई भी अभिलाषा ना हो जिसके अंदर ज्ञान कर्माध्यनावृतम, ना ही सकाम कर्मों के फल की इच्छा हो और ना ही ज्ञानी बनने की इच्छा हो। जो भी सेवा कर रहे हैं, चाहे शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, चाहे जो भी दूसरी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या फिर कोई भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा, तो उसका लक्ष्य एकमात्र क्या होगा, कृष्ण को प्रसन्न करना, ये होती है शुद्ध भक्ति। तो ऐसे भगवान कहते हैं भक्त्या तो अनन्या शक्य, यानी अगर संभव होता है मुझे जानना तो उसकी विधि क्या है, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही ऐसा संभव है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन, ज्ञातुम मतलब जानने वाले और दृष्टम मतलब देखने के लिए, तत्त्वेन यानी वास्तव में, यदि वास्तव में कोई मुझे जानना चाहता है, मुझे देखना चाहता है, तो केवल एक ही विधि क्या, अनन्य भक्ति के द्वारा, कि बस मेरे को प्रसन्न करने की इच्छा से वो मेरी शरण ग्रहण करता है। प्रवेशम च परंतप, और यही एक तरीका है। भगवान कहते हैं केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। यानी कि भगवान ने बता दिया कि देखो अर्जुन, और कोई तरीका है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अध्ययन करके या फिर ना श्रवण, मतलब अध्ययन करके क्या, पढ़ के या केवल सब काम कर्म करके मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ और इस तरह से भगवान को समझना, ऐसे नहीं होगा। भगवान कहते हैं आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, एक भक्ति का प्रोसेस होता है जिसमें भक्त कार्य करता है। ऐसे हम सुनते रहे कि हाँ भाई भगवान का नाम जपने से भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन यदि हम नाम जप नहीं करते हैं, देखो एक होता है श्रवण करना, और श्रवण वास्तव में श्रवण का मतलब ये नहीं है कि कान के द्वारा अंदर चला गया और बस, उसके लिए हमें प्रोसेस भी करना होता है, है ना, फिर हम कहते हैं श्रवण किया। जैसे अगर किसी को मैं बोलूं, कोई भी वहां पर सामने चीज पड़ी हो और मैं बोलूं वो लेकर आओ, तो वो सुने, सुन तो लिया उसने, लेकिन अगर वो लेकर नहीं आएगा तो मैं क्या बोलूंगी, बहरे हो क्या, सुना नहीं, मतलब आपको सुनाई नहीं दिया कि वहां पर आके, यानी कि सुनने का मतलब क्या है कि उस पर फॉलो करना। तो यदि हम भगवान के, हम सुनते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का कार्य केवल यही विधि है कि भगवान की भक्ति की जाए, तो फिर यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि भक्ति किसको कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, वैसे तो शास्त्रों में नवधा भक्ति का विधान है कि भक्ति क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की वंदना करना, भगवान से अपना संबंध स्थापित करना सखा रूप में और वात्सल्य रूप में या माधुर्य रूप में, इसको भक्ति कहते हैं, नवधा भक्ति। परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैसे श्री रूप गोस्वामी ने तो 64 अंग बताए भक्ति के, 64 अंग बताए हैं, लेकिन उनमें भी 5 अंग बहुत मुख्य हैं जो कि हमें करने चाहिए। और अगर हम उन 5 चीजों को करेंगे तो हम भगवान तक पहुंचने का वो रास्ता है। सबसे पहला साधु संग, हमें भक्तों का संग करना चाहिए, जो वास्तविक भक्त हैं। अब किस तरह के भक्तों का संग करना चाहिए वो भी बताते शिला रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में। कृष्णेति यस्य गिरितम् मनस्यादीत दीक्षास्ति चेत्प्रणति विश्वभदन्तमीशम्। कि अगर ना कोई भगवान का नाम लेता है सिर्फ अपने मुख से, तो उनको तो मन से आदर करना चाहिए, मन से आदर करना चाहिए। ऐसे नहीं खाली प्रणाम करो, मन से आदर करना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण जीव नहीं होते जो भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। अनेकों अनेकों जन्मों के बाद किसी के मुख से भगवान का पवित्र नाम निकलता है। कोई साधारण व्यक्ति जिसके जन्मों के पुण्य एकत्र नहीं होंगे ना, उनको बोलो महामंत्र पढ़ना भी नहीं आएगा उनको। तो जो बहुत ही भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं उनको हमें मन से आदर करना चाहिए। और जो डीटी वर्शिप करते हैं, दीक्षा से चेत प्रणति भेष्य भजन तमेश, दीक्षा लेकर भगवान के विग्रह का विग्रह की सेवा करते हैं, उनको भी है ना सादर नमस्कार करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो फिर संग किसका करना चाहिए? शुश्रूषया भजन भीष्म अनन्य मन्य, जो अनन्य मन से यानी कि केवल और केवल कृष्ण के सरेंडर है, और निंदा आदि शून्य हृदय में, किसी की निंदा नहीं करते हैं। क्योंकि भले उसके अंदर कितने ही करोड़ों गुण हो, यदि उसके अंदर ये निंदा का अवगुण होता है तो वो कभी आपको भगवान के पास नहीं ले जा सकता। बल्कि क्योंकि वो जब निंदा कर रहा होगा तब आप निंदा को श्रवण कर रहे होंगे, और इससे आपने भले कितने ही पुण्य अर्जित किए हैं उनका सर्वनाश हो जाएगा। तो भक्तों का संग करने से पहले हमें सावधान रहना चाहिए। हमारे आचार्यगण हमें सावधान करते हैं कि किस तरह के भक्तों का आपको संग करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा सबसे पहले साधु संग, यानी ऐसा भक्त जो स्वयं निपुण हो भक्ति करने में और किसी की निंदा नहीं करता है, और आपको बता सकता है जो तत्व, जो सत्य शास्त्र बता सकता है, गुरु आदेश को बता सकता है, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। और दूसरा भजन क्रिया, भगवान के भजन का भगवान के नाम का जप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु संग भजन क्रिया और मथुरावास यानी तीर्थों में जाना चाहिए। ऐसे अगर हम रह भी नहीं सकते क्योंकि वो पुण्य स्थान होते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है, रिचार्ज हो जाते हैं हम, और हम शुद्ध भक्ति करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। और मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धार सेवा, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के जो है उनकी श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए और भागवतम को श्रवण करना चाहिए। ये 5 ऐसे मुख्य साधन है जिनको भक्ति कहा महाप्रभु ने, और कहा यदि आप ये कर रहे हो तो समझो आप ना भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि ये ना कंप्लीट मात्र में अगर हम नहीं कर सकते, जैसे अभी मथुरावास हम कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, जैसे साधु संघ भी हमें ना हर समय प्रोवाइड नहीं होता है, और इसके अलावा विग्रह सेवा या फिर नाम संकीर्तन का भी बहुत कम चांस मिलता है। तो बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति जन्माले ए पंचीर अल्प संग, कि अगर ये 5 का आप थोड़ा थोड़ा भी संग करते, जैसे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, अगर आपको शुद्ध भक्त का संग अगर थोड़ा सा भी मिल जाता है तो भी आपकी सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर आप नाम संकीर्तन में थोड़ा सा भी भाग लेते हो और बस एक दिन में सिर्फ अपनी 16 माला कंप्लीट करते हो और विग्रह की सेवा करते हो, भगवान को प्रसाद भोग लगा के खाते हो, मंगला संध्या करते हो, तो ये थोड़ा सा भी संग यदि हम करते हैं तो हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। तो और भगवान ने कहा कि मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, क्या? भक्त्या तो अनन्या शक्ति, यानी हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते कि भगवान आप आ जाइए मुझे दर्शन दीजिए। भगवान के साथ हम ना डिमांड कर सकते हैं कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ, और ना ही भगवान के सामने अपनी इच्छा को प्रकट कर सकते हैं, ना डिमांड ना डिजायर। हमें क्या करना है, हमें उस क्वालिफिकेशन हमें वो प्राप्त करनी है, हमें वो जग वो कार्य करना है जो भगवान ने कहा है, भाई ये कार्य करोगे तो मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। तो हमें भले हमारे अंदर कितनी भी इच्छा हो, लेकिन हम अपनी इच्छा को भगवान के ऊपर थोप नहीं सकते कि आप ना आ जाइए, क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं। भगवान की अपनी इच्छा है कि वो किसके सामने प्रकट हो और किसके सामने प्रकट ना हो। भगवान तो भगवान है, एक साधारण कोई पीएम हो, कहीं का प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी आप ये थोड़ी है कि आप उसको बोल दो कि भाई आप मेरे सामने प्रकट हो जाओ तो वो प्रकट हो जाए, है ना। वो कभी भी हम लोग नहीं देख सकते, इसलिए देखिए उसकी जब इच्छा होती है ना, जब वो चाहता है कि मैं किसी के सामने प्रकट होना चाहता हूँ, तो वो अपनी इच्छा से प्रकट होता है। इसी तरह से भगवान भी यहाँ पर साफ साफ लिखा है, नचास्य कश्चन नृपेण धातु अवैति जंतु कुमनीश उति, क्योंकि जीव जो है वो इतना अज्ञानी है कि अपनी मानसिक चिंतन, यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने दो चीजें बताई है कि भौतिकतावादियों की दो कोटियां हैं, एक सकाम कर्मी यानी अच्छे कार्य करके फल चाहता है, और दूसरे मीमांसक है यानी वो क्या करते हैं, मन से चिंतन करते हैं, खुद से पढ़ के खुद से चिंतन करते हैं कि भगवान ऐसा होगा, भगवान ऐसा होगा, भगवान के विषय में जानने। तो फिर क्या होता है कि क्योंकि वो भगवान को केवल चिंतन द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, भगवान को संकल्पना के द्वारा समझना चाहते, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भगवान ने सुत्र गोस्वामी ने बहुत अच्छा बताया, संतन वतो नट चरियामि वाक्य, क्योंकि भगवान जो कार्य करते हैं, जब भगवान संसार में आते हैं तो वो ड्रामेटिक एक्शन की तरह, यानी कि जैसे ड्रामा में कोई एक्टर कैसे कार्य करता है, उस तरह से कार्य कर रहा होता है। भले ही वो स्क्रिप्ट्स भगवान ने लिखी होती हैं और एक्टिंग भी भगवान स्वयं कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम हमारे आंखों पर माया का पर्दा चढ़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर श्री भगवान ने बहुत अच्छा बताया कि ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य उसी तरह से रहस्य बने रहते हैं जिस प्रकार से बच्चों को जादूगर के कर्तव्य, अब जादूगर कर रहा होता है वो कर्तव्य होते हैं। अगर जादूगर के लिए ये संभव होता कि वो एक ना डब्बा खाली ले और उसके अंदर हजारों रुपए के नोट है ना निकल आए, तो फिर वो जादूगरी का काम नहीं करता, वो फिर कहीं का प्रिंस बन जाता है ना। लेकिन बच्चे कितना हैरान होते हैं कि जादूगर कैसे कार्य कर रहा है, उस तरह भगवान भी आते हैं, उनका भगवान नहीं लगते हैं, वो बस ऐसा लग रहा है कि ये कोई महाकर्तव्य करने वाला है, ऐसा लगता है। क्योंकि उनके अंदर भगवान ने साफ साफ कहा, भगवान श्रीमद भगवद गीता 9.11 में, अवजानंति मा मूढ़ा मानुषम तनमाश्रितम, जो मूढ़ होते हैं, जो है ना जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, उनको आप कैसे समझो कि जब मैं मनुष्य देह धारण करके आता हूँ तो वो मुझे नहीं जान पाते, वो ये नहीं समझ सकते कि मैं समस्त लोगों का ईश्वर हूँ। हाँ, भगवान कहते हैं अवजानंति मा मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, कि मेरा भाव परम है, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, समस्त लोगों का, समस्त भूतों का, समस्त जितने भी जीव हैं उनका महेश्वर हूँ, वो नहीं जान सकते। इसीलिए भगवान ने बताया है कि यदि आपको तत्व को समझना है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, 4.34 में भगवान ने बताया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन, कि आपको किसी तत्वदर्शन ज्ञानी के पास जाना चाहिए। ऐसे आप मुझे नहीं समझ सकते जब कोई गुरु परंपरा से आया हुआ आपको मेरे विषय में बताएगा और वो कार्य आप करोगे तो स्वयं प्रकट होऊंगा मैं अपनी कृपा से। भगवान कहते हैं 10.10 में कि देखो मुझे जानने की विधि में बताऊं तुमको, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते, अगर आप प्रेम से मुझे जानो जानने मेरा भजन करोगे तो फिर ऐसा संभव है कि मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि दे दूं, यानी आप इन चरम चक्षुओं से और अपनी इस भौतिक बुद्धि से भौतिक चीजों को ही देख सकते हो, क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ तो आप मेरी मुझे नहीं देख सकते और मेरी प्रकृति को भी नहीं समझ सकते, फिर मैं तुमको दूसरी एक बुद्धि दूंगा, यानी कि वो बुद्धि आपकी ये है ऐसी बुद्धि होगी जो आपको मुझे समझने में सहायता करेगी। और वो भगवान कहते हैं वो मैं कैसे दूंगा, जब मैं तुम पर अनुकंपा करूंगा। इलेवन में कहते हैं, 10.11 में भगवान कहते हैं अहमज्ञानतम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। फिर ऐसे जो सदैव मेरे नाम का संकीर्तन करते रहते हैं, मेरा मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं, उन पर मैं इतनी अनुकंपा करता हूँ कि उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जला देता हूँ और उनका जो अंधकार होता है अज्ञान का वो नष्ट हो जाता है और फिर वो मुझे जान सकते हैं। इस बात को भगवान ने बताया है 38 में। भगवान कहते हैं सवे ददातु पदवी वरस्य। सवेद मतलब वो जान सकते हैं, केवल वही जो मेरी अनुकंपा प्राप्त करते हैं, जो ऐसा कार्य करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वही जान सकते हैं। और पदवी महिमा, क्योंकि मेरी पदवी जो है, मेरी महिमा जो है, वो बहुत ही रहस्यमयी है और आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक चीज को जानने के लिए आपको आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है। और इसमें एक सुंदर नाम भगवान का बताया गया, रथंग पाणी, यानी दुरंत वीर्यस्य। उनको समझना आसान नहीं है, अत्यंत ही शक्तिशाली हैं भगवान। और जब शक्ति का आना प्रदर्शन करने का समय आया तो भले उनको हथियार ना उठाना था लेकिन उन्होंने रथ का चक्र उठा लिया। ऐसे भगवान को समझने के लिए आपको क्या करना है कि आपको बिना किसी हिचक के अभाद्य रूप से उस भगवान चक्रधारी के की अनुकूल सेवा करनी है। यानी कि भगवान की जब हम सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे और भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे तो क्या होगा, सवेद मतलब वही जान सकता है, क्योंकि वो भगवान को ही साधारण यो माया संत वृत्या, यानी कि वो भगवान की निरंतर संतत का मतलब होता है कंटिन्यूस भगवान की निरंतर सेवा करता है, कोई उसके अंदर वो नहीं आता। जैसे तेषाम सतत युक्ताना होता है ना, इसी तरह से सतत सेवा यदि करता है और सदैव भगवान का पवित्र नाम का भजित तत्पाद सरोज गंध के भगवान के चरण कमल है, उनकी उनकी प्रेम से यदि सेवा करता है, यानी भगवान का चरण कमल कैसा होता है कि उनकी ओर अगर हम आकर्षित होते हैं तो भौतिक आकर्षण समाप्त हो जाता है। और जब तक हमारे हृदय में ये भौतिक आकर्षण है, भौतिक वस्तुओं की इच्छा है, भौतिक कामनाएं भरी हुई है, तब तक हम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तब यानी भगवान को समझने के लिए, भगवान को देखने के लिए हमें एक दिव्य दृष्टि चाहिए होती है और वो तभी प्राप्त हो सकती है जब हम कंटिन्यूस भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के चरणों में अपना मन लगाते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बताया कि केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों और कल्पनाओं के फलों से मुक्त होने के कारण, क्योंकि जब वो शुद्ध भक्त होता है तो क्या उसके अंदर कोई भी दूसरी कामना नहीं होती है, तभी वो भगवान के दिव्य नाम रूप उनकी लीलाओं को समझ सकता है। और इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। वो ये नहीं सोचता है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो मुझे ये प्राप्त हो जाए। वो बगैर किसी अन्य अभिलाषिता शून्य, वो किसी भी इच्छा और अभिलाषा के बगैर वो भगवान को प्रेम करता है। बस उसको खाली क्या पता होता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य ही कृष्ण को प्राप्त, क्योंकि उसके अंदर इतनी बुद्धि होती है, वो मूर्ख नहीं होता है। उसको पता होता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और मेरी एक ही सेवा है, मेरा एक ही कार्य है कि मैं भगवान की भक्ति करूँ। तो ऐसे जब उसके हृदय में आता है तभी वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके एक आध्यात्मिक सतगुरु की शरण में जाकर वो, वरना तो क्या होता है, क्योंकि संसार का नियम है कि आपको सेवा करनी है। अगर आप सेवा करना ही चाहते हो और आप सिंसियर नहीं हो तो आपको इसी तरह का, यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने एक सुंदर है ना बात बताई है कि कपटी प्रतिनिधि के द्वारा अभाद्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं, यानी कि अप्रतिनिधि तो बहुत सारे होते हैं भगवान के, जैसे हमारी भावना होती है ऐसा हमें गुरु प्राप्त होता है। तो यदि कोई कपटी मिल जाता है तो फिर भगवान की ही सेवा करते हैं भले हम उसका, लेकिन फिर भी वो कौन सा तरीका होता है, वो अप्रत्यक्ष तरीका होता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता 9.23 में कि ये अप्यन्य देवता भक्ता भजन्ते माम ऋणा विस्ता ते भी मामेव कौन्तेय भजन्त्य विधि पूर्वक, कि वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सेवा करते हैं भले वो भी मेरी ही करते हैं, लेकिन जिसको किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तभी वो भगवत कृपा से भगवान की वास्तविकता को जान सकता है और भगवान के आध्यात्मिक गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। इसके लिए भगवान स्वयं उनका साथ देते हैं, यानी कि जितनी भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजामि, आपके अंदर जितनी श्रद्धा होगी, जितना आपके अंदर आप कितना सिंसियरिटी से आप मेरे पास आना चाहते हो उतना ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो यदि हम पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी सिंसियरिटी और पूरी सीरियसनेस के साथ भगवान के पास जाना चाहेंगे, हमारे अपने हाथ में है कि हम कितना सिंसियर हैं, कितनी श्रद्धा से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, दिन में कितनी दफा हम भगवान को याद करते हैं, कितनी माला हम सीरियस होकर भगवान के सामने पवित्र नाम को श्रवण करते हुए जप करते हैं, और कब कब हम मंगल आरती करते हैं, कब नहीं करते हैं, कैसी सेवा कर रहे हैं, कैसी साधना कर रहे हैं, कितना सिंसियर हैं। जितना हम सिंसियर होते हैं उतना ही भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। ये भगवान की अपनी इच्छा है, हम केवल कार्य कर सकते हैं, हमारा केवल प्रयास होता है। और भगवान कैसे आते हैं हमारे सामने, अपनी अनुकंपा से, अपनी कृपा से। जब भगवान देखते हैं कि साधक एकदम सावधानी के साथ और सिंसियरिटी के साथ कार्य कर रहा है तो भगवान भी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद भी सीरियस नहीं होते हैं, बस इसे इंटरटेनमेंट समझते हैं भक्ति को, और है ना मजा आता है तो करो, नहीं मजा आया आज मन नहीं कर रहा आरती करने का या फिर आज ये, तो फिर है ना भगवान भी बोलेगा ठीक है मेरा भी मन नहीं कर रहा है तुम्हारे सामने आने का। यानी कि भगवान अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं भक्त के प्रयासों को देखकर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।